अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की ग्रंथराज भागवत महापुराण की संवेद भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 26 से 36 तक एक डजन। तो बोर्ड में 36 लिखा है, उसको आवृत्ति करेंगे, बाकी भी पढ़ लेंगे। उर्वशीवाच मामृथः पुरुषोऽसि त्वं सख्यं नवे स्त्रीणां लिकाणां हृदयं यथा। उर्वश्युवाच मामृथः पुरुषोऽसि त्वं सख्यं नते वै क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां मृकाणां हृदयं यथा।
कामं चैत्ररथादिषु सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा,
पुरुषश्रेष्ठ पुरुर्वा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्ररथ नंदन कानन जैसे अनेक देवी स्थलों से रति क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहां पर देवतागण भोग विहार करते हैं। रमणस्तया पद्म किंजल गंधया शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से अनुप्राणित होकर उर्वा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक उनके अनेक दिनों तक उनके साथ रमण किया। श्लोक 26। अपश्यन उर्वशीर इंद्रो गंधर्वान समचोदयत उर्वशी रहितं मह्यं स्थानं नासितो सुहित। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्व से अनुरोध किया कि वे उसे पुनः स्वर्गलोक में वापस ले आए। श्लोक 27। ते उपत्य महारात्रे तमसी प्रत्युपस्थिते उर्वश्या पूर्णै जूर्णन् न्यस्तो राजा निजायया। इस तरह गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरुर्वा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा प्रदत्त दोनों मेमने को चुरा लिए। श्लोक 28। निशम्याकृतितं देवी पुत्रयोर्णीयमानयो हता भयं कुतान कुतान कुनाथेन नपुंसा विरमानिना। उर्वशी इन दोनों मेमने को पुत्र स्वरूप मानती थी, अतएव जब उन्हें गंधर्वगण ले जा रहे थे और जब उन्होंने ममियाना शुरू किया तो उर्वशी ने इसे सुना। उसने अपने पति को फटकारते हुए कहा, हाय हाय, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहती हुई मारी जा रही हूँ जो कायर एवं नपुंसक है किंतु आपने को परम वीर समझता है। श्लोक 29। जद्विश्रम्भादह नष्टा भूतापत्या च दस्युभिः यसेते निशिसंत्रस्तो यथा नारी दिवापुमान। चूंकि मैं उस अपने पति पर आश्रित थी, अतः लुटेरे ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमने को छीन लिया है और अब मैं विनष्ट हो गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसे कोई स्त्री हो, यद्यपि दिन में वह पुरुष की भांति प्रतीत होता है। श्लोक 30। इति वाक्सायकैर्विद्धे प्रतोत्रैरिव कुञ्जरः निशी स्त्री समादाय विवस्त्रो भद्रभत्रिषा। पुरुर्वा उर्वशी के कर्कश शब्द से आहत होने के कारण उसी तरह से अत्यधिक क्रुद्ध हुआ जिस तरह हाथी महावत के अंकुश से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्व का पीछा करने के लिए नंगे बाहर चला पड़ा। श्लोक 31। ते विसृज्यो रणो तत्र व्यादो तन्न स्म विद्युतः आदाय मे समायांतं नग्नमेख्यत सापतिम। उन दोनों मेमने को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे, जिससे पुरुर्वा का घर प्रकाशित हो उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमने को हाथ में लिए लौट आए हैं, किंतु वह नग्न हैं, अतः उसने उनका परित्याग कर दिया। श्लोक 32। हे लोग भी सयने चायं अपश्यन् विमनाइव तच्चित्तो विभण शोचन ब्राह्मण मतपन महिम। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देखकर पुरुर्वा अत्यधिक दुखी हुए हो। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन में खिन्न था तत्पश्चात विलाप करते हुए वह पागल की तरह सारी पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। सतां विख्य करो क्षेत्रे सरस्वत्यांच तत्सखी वंश प्रभुष्ट वदनः प्राह सुक्तं पुरुर्वाह। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुरुर्वा ने उर्वशी को उसकी पांच सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में से इस प्रकार बोला, अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वम् अद्याप्य निवृत्य वचांसि पुनर्वावहे। हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहर तो। मैं जानता हूँ कि अभी तक मैं तुम्हें कभी भी सुखी नहीं बना पाया, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर ही चुकी हो, किंतु तो भी आओ कुछ क्षण बैठकर बात तो कर लें। श्लोक 35। सुदेवहं पतयं यत्र देवी दुरंगितस्त्वया खादन्तेन मृका रुद्रा त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्। हे देवी, क्योंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतः मेरा यह सुंदर शरीर यहीं धराशायी हो जाएगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूँ, इसलिए इसे लोमड़िया तथा गिद्ध खा जाएंगे। श्लोक 36। उर्वशी उवाच, माम तथा पुरुषोऽसि त्वं मास्मत्वारुका इमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां मृकाणां हृदयं यथा। शब्दानुवाद, उर्वशी उवाच, उर्वशी ने कहा, माम वृथा, अरे शरीर त्याग मत करो, पुरुषोऽसि, आप पुरुष हो, त्वं, त्वं, तुम, मास्म, ऐसा न होने दो, त्वा, तुमको, अद्य, खा सके, अद्य हो, खा सके, ब्रिका, लोमड़ी, इमे, इन इंद्रियों को, क्व अपि, कहीं भी, सख्यम, मैत्री, न वै, कभी नहीं, स्त्रीणाम, स्त्रियों के, वृकाणाम, लोमड़ियों की जैसे, हृदयम, हृदय को। अनुवाद मुता द्वारा उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो, गंभीर बनो और लोमड़िया की भांति अपने इंद्रियों के वश में मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपने इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्री से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं। तात्पर्य, चाणक्य पंडित का उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च। किसी स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी भी विश्वास मत करो। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और पतित है। फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो मनुष्य की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है। स्त्रियों की तुलना शूद्र तथा वैश्यों से की जाती है, स्त्री और वैश्यास तथा शूद्रा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त कर लेता है, तो चाहे वह मनुष्य हो या स्त्री, शूद्र हो या अन्य कुछ, सभी बराबर होते हैं। अन्यथा उर्वशी जो स्वयं स्त्री थी और स्त्री स्वभाव को जानती थी, वह न कहती कि स्त्री का हृदय धूर्त लोमड़ी की तरह होता है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता, तो वह ऐसे धूर्त लोमड़ियों का शिकार बन जाता है। किंतु यदि वह इंद्रियों को बस में कर लेता है, तो वह धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों का शिकार नहीं बन सकता। चाणक्य पंडित ने यह भी उपदेश दिया कि यदि किसी की पत्नी धूर्त लोमड़ी जैसी हो तो उसे तुरंत ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके जंगल में चला जाना चाहिए। माता जस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी अरण्यं तेन गंतव्यं यथा अरण्यं तथा गृहं। कृष्ण भावना भावित गृहस्थ को धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि घर में स्वाभाविक पत्नी हो और वह कृष्ण भावनामृत में पति का सहयोग करती हो तो वह घर धन्य है, अन्यथा मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़कर जंगल में चला जाए। इत्वापातं गृहमंधकूपं वनंगतो जत हरिमाशयेत। मनुष्य को जंगल जाकर भगवान हरि के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरंगस्य ज्ञानमनसराय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वदां देहं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपरमं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहगणं करुणाकरं श्रीवं सावेतं सावभूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं नमस्ते सरस्वती। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौरवभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। ये जो प्रसंग आप नौवां स्कंध में अभी चर्चा कर रहे हैं जिसमें पुरुर्वा उर्वशी प्रसंग वर्णित हुआ है, आप लोग तो श्रील पढ़कर आए हो, पता होगा जो आज नए आए हैं तो उनके लिए थोड़ा पूर्व प्रसंग को बोलना सही है। तो पुरुर्वा महाराज सत्यजुग के चक्रवर्ती नरेश थे। इतने सामर्थ्यवान प्रभावशाली और रूप गुण में श्रेष्ठ पुरुष थे जिनका वर्णन इंद्र ने आपने असेंबली हाउस में स्वर्ग लोक में किया। भला कोई पुरुष हो रूपवान गुणवान वीर हो तो महाराजा पुरुर्वा जैसे उनका बात किया और खूब बड़ाई करो। उनके रूप गुण का वर्णना इंद्र की अमरावती अमर सभा में हो रहा था उसको सुन करके स्वर्ग की देवांगना उर्वशी वो फंसी। उन्होंने डिसाइड की अरे जो भी हो उनको मित्र वरुण का साप भी था तो उन्होंने स्वर्ग त्याग करके पुरुर्वा को प्राप्त करने के लिए वो डाउनवर्ड बैठ ली नीचे आए। अब आकर के पुरुर्वा से पुरुर्वा के राज्य में आकर के मिली उनको पुरुर्वा के सीधा उनको तो कहीं भी घुस जाएंगे उनको कोई चेकिंग फेकिंग है नहीं वो सुकमा शरीर वाले सीधा आकर उनके घर में प्रवेश किया। पुरुर्वा ने जब देखा उर्वशी को देखते ही होगी क्योंकि स्वर्ग के उर्वशी कोई स्वर्ग के प्रोडक्ट नहीं है वो सीधा भगवान के प्रोडक्ट है। हाँ भगवान नर नारायण में अपने अंगों से उनको बनाए थे वो ऐसे मटेरियल प्रोडक्शन नहीं है ना वो स्पिरिचुअल बॉडी कंप्लीट। अब उनको तो फिर गिफ्ट में दिए थे इंद्र को, इंद्र अपने स्वर्ग में रखा था उनको स्वर्ग की ब्यूटी करके क्वीन ऑफ हेवन तो उस मान के रखा था। लेकिन कुछ गड़बड़ी हुआ था मित्र वरुण ने साफ दिए थे और उन्होंने भी पुरुर्वा के रूप गुण सुन करके थोड़ा आसक्त हुआ था तो उन्होंने आ गया पुरुर्वा से शादी करने के लिए। वो आकर चुपचाप अपने को संभाल कर खड़ी हो गई उनके सामने पुरुर्वा महाराज टोटली सरेंडर हो गए। बलवास और क्या है आप वो सब छोड़ करके उनको सरेंडर किए। जो भी हो वो दोनों का बातचीत हुआ तो उन्होंने आग्रीमेंट साइन किए कि शादी करेंगे। लेकिन क्योंकि वो स्वर्ग की देवी थी उर्वशी ने तो उन्होंने कुछ कंडीशन रखी। बोले मैं देखो मैं स्वर्ग छोड़कर आई हूँ यहाँ पर हमारा सिस्टम कल्चर अलग है आपका यहाँ अलग है तो इसलिए कम से कम दो तीन सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ राजी होंगे ना, बताओ क्या क्या है। वो तो पहले से राजी हूँ, फिर बता तो बताओ। बोले देखो मेरे साथ दो मेमने, समझते ना हिंदी मेमने, भेड़ भेड़िया के बच्चे, भेड़ के बच्चे हैं। अच्छा भेड़िया दूसरा आदमी, अच्छा भेड़ के बच्चे जो भी हो, छोटे छोटे वो कुछ तो लेकर आया था। बोला ये मेरे साथ हैं, मेरे साथ वही इम्पोर्टेड हैं, यहाँ के प्रोडक्ट नहीं है, तो उनको मेरे साथ रहना, उनकी सुरक्षा ना कोई बात, अरे सुरक्षा उनको, पूरा राज्य को सुरक्षित कर रहा हूँ, दोनों नो प्रॉब्लम ना, नहीं हमेशा रहेंगे राजभवन में, कहीं इधर उधर कोई चोरी चरी ना हो जाए। अरे चोरी की बात क्या, तेजरी में रखते गए ना, नहीं खिलाना पड़ा ना, कोई बात नहीं रहेंगे। हाँ 10 पीस गार्ड रख दिया होगा उनके पीछे। दूसरा कंडीशन क्या है ना, देखो यहाँ का आपका जो खान पान बड़ा गड़बड़ है, आपकी तबीयत खराब होगा, तो इसलिए हम तो केवल घी खाऊंगे और फिर देसी। आजकल घी बोलने से तो बाजार से खरीद लाएंगे, डुप्लीकेट है। तो बोला नहीं देसी, तब जमाने सब तुझे मैं देसी तो मिलता हूँ, देसी घी केवल खाऊंगी या घी के बना हुआ प्रोडक्ट वही खाऊंगी। तो राजा के पास घी का कम से कम था, राजी हो गया ओके। और तीसरा कि किसी भी समय केवल मैथुन के समय को छोड़ करके बाकी किसी भी समय में आपको वस्त्रहीन अवस्था में नहीं देखना चाहती हूँ, ओके नो प्रॉब्लम। तो तीन कंडीशन से एग्रीमेंट करके तो उन्हीं को अपने पत्नी के रूप में अपॉइंटमेंट कर दी। तो करने के बाद आज 26 नंबर श्लोक से हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उन दोनों दंपतियों ने आप जितने स्वर्ग के बड़े बड़े बगीचाएं थे, नंदन कानन चित्ररथ आदि, हम तो नाम ही सुनते हैं, वही थर्ड क्लास से बगीचा जाके देखते हैं बाकी है ना। लेकिन वो जो सब स्वर्गीय कानन है, मतलब उनके पास कोई व्यवस्था था, वहाँ जाते थे, तब जमाने में तो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी था स्वर्ग को दूसरे दूसरे लोगों को जाने के लिए, लेकिन उनका तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होगा ही, अपना हेलीकॉप्टर वगैरह होगा, चले जाते थे स्वर्गीय नंदन कानन चित्ररथ ऐसे सब यहाँ जा करके रमण करते थे, घूमते थे, हनीमून करते थे, अनेक दिन कई वर्षों मन नहीं भरता था। राजा है क्या, वहाँ किसी को सेवा में लगा करे, अपने घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, कई वर्षों बीत गया, आकर फिर महल में भी आते थे रहते थे, तो लेकिन उनका तृप्ति फिर भी नहीं होता। लेकिन एक दिन इंद्र को लगा कि रूपसी जी एब्सेंट, तो उनको अच्छा नहीं लगा, यद्यपि और भी देवांगनाएं थे लेकिन इंद्र को अच्छा नहीं लगा। वो इंद्र को बुला के बोला वाडा ये क्यों नहीं है, उनके बिना स्वर्ग के सभा श्रीहीन हो गया, आप जाओ किसी भी उनको लेकर उनको बता है सही 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 नहीं नहीं, नहीं कोई से प्लान करो उनको ब्याग ब्रिंग हर ब्याग। तो उन्होंने बोले ठीक है, तो उन्होंने प्लान किए, वो गंधर्वों ने फिर आए आ करके मध्य रात्रि आधी रात को आ करके अब उनका घर में घुसे पूर्ववा के राजमहल। उनको तो कोई सुखमन शरीर वाले उनको कोई दरवाजा गेट चौकीदार कुछ रुक नहीं सकता, सीधा घुस गए। घुस कर आ करके जहाँ मेमने दोनों थे, वो भी स्वर्ग के प्रोडक्ट थे ना, वो अपने समझ गए, वो उनको उठा करके जा रहे। तो मेमने को पिंच करते हमको चिल्लाए, वो आवाज़ की म्याम म्याम जैसे लिखा है कुछ, जो भी आवाज़ की जो भी जैसे आवाज़ भेड़ के बच्चे के होते हैं इस आवाज़ की, वो आवाज़ को सुन करके वो उनका नींद खुल गई। मिड नाइट में उर्वशी का नींद खुली, अब उनको तो लगा कि मेरे मेमने चोरी हो जा रहे हैं, तो सोते अवस्था में इतने डांट लगाई, इतने फटकारी अपने पति को पुरुर्वा महाराज को, बड़ी कटु भाषा में कर्कश भाषा में बोली। तो वो तो सोए थे लेकिन अभी इतने कटु वाणी सुन करके तुरंत खड़े हुए, तलवार खींच लिए और चल पड़े, और हम भूल गए कि कपड़ा भी पहन भी सही नहीं, आधी रात में चल पड़े, अंधकार ही था। और जा करके और उन्होंने कुछ ज़्यादा दूर नहीं गए, उनको पता था तो उनके क्या करना है, वही घर के अंदर कुछ ज़्यादा दूर नहीं गए थे, वो धमका जैसे पीछे गया तो उन्होंने क्या कि बच्चे को छोड़ दिए, उन्होंने छोड़ करके स्वयं अपने सब सेल्फ लाइटेड होते हैं तो लाइट ऑन कर दिया अपना, और पूरा घर सारा लाइट हो गया, लाइट हो गया तो मैंने उठा लिए थे, लेकिन उर्वशी ने खाड़ी थी वो देखा कि वो तुमने कर, बोला तीसरा कंडीशन हो गया, अब बाय बाय खत्म, चली गई चली गई। तो कुरुवा महाराज पागल हो गए, पागल हो करके राज्य घर परिवार सब छोड़ करके उनके लिए पागल होकर घूमने लगे। कई वर्षों विश्व भ्रमण कर रहे थे, पूरा विश्व तो उसको ढूंढने करके हा उर्वशी कहकर ढूंढ करके पागल की तरह एक बार कुरुक्षेत्र में आकर पहुंचे। कुरुक्षेत्र में कई सालों के बाद एक बार भेंट हुआ, और उर्वशी अपनी पांच सखियों के साथ आई थी। पता नहीं कुरुक्षेत्र स्नान टाइम करने आई होगी जो किसी में आया हो, सर सूर्य ग्रहण वगैरह होगा किसी में, जो भी हुआ वो भी शायद इसलिए गए होंगे, वो वहीं भेंट हुए, हम पहचान लिए कुरुआ महाराज। तो पहचान ले तो उनको बुलाए, बोले देखो आप थोड़ा रुक जाओ, मुझे छोड़कर क्यों चले गए, जो आपने जो बहुत दुख की बात कहे। आप बोले कि ये बात से सुनेगा कि नहीं पता नहीं, तो फाइनल वार्निंग दिए, बोले देखो आप फिर मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरे साथ बैठेंगे नहीं, चले जाओगे तो मैं यहीं सुसाइड करूँ, मर जाऊंगा वहीं पे, और आपके सामने मेरे ये राज शरीर को देखना, ब्रूक आदि ब्रूक इसी कहते हैं सर, जो कुत्ते जैसा होते हैं, लोमड़ी पता नहीं किसको कहते हैं, लोमड़ी किसको कहते हैं, बार बार ही समझा। हाँ, जो मुर्दा को खाने वाले होंगे वही होंगे, गीत लोमड़ी इसको बोलते हैं। बोले मैं तो मर जाऊंगा और वो लोग खाएंगे, तुझे अच्छा लगेगा, तू इतने दिन तक इतने साल तक मेरा पत्नी रहा और तेरे पति को ऐसे खा जाएंगे, मुर्दा को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए प्लीज बी मर्सीफुल, इतने प्रार्थना की। तो ऐसे प्रार्थना सुन करके उर्वशी ने बोला, उर्वशी स्त्री उनकी पत्नी वो बोल रही है कि श्लोक उर्वशी वाच, और आगे चार पांच श्लोक उर्वशी ने बताएंगे, स्त्रियों के पोल खोल देंगे, अब उसमें दोष नहीं देंगे क्योंकि उनकी तरफ है। तो उन्होंने बोली, बोले अरे तुम पुरुष हो, वीर हो, राजा हो, ऐसे क्यों हो रहा है, इसे मरने के लिए क्यों, सुसाइड करने के लिए क्यों तैयार हो रहा है, मरो मत, मैं समझाए, तुझे इतनी सुंदर राज शरीर है उसको ब्रुक ना खा जाए, ऐसा मत करो, रुको रुको प्लीज ढूंढ ढूंढ लेता है। तो फिर क्या करे ना, देखो तुम क्यों इतना फंस जा रहे, आपने कोई संयमित नहीं कर रहा, आपको पता नहीं स्त्रियों के बारे में उर्वशी ने कहा कि स्त्रियों के साथ मित्रता करना वो इतने खतरनाक होते हैं, उनके हृदय कैसा होता है, लोमड़ी जैसा होता है, हाँ खा जाएंगे, तो इसलिए खतरनाक। तो स्त्री के साथ बहुत होशियार से मित्रता करना, यही श्लोक में तो लिखा है, वापि सख्यं नैव स्त्रीणां दुकाणं हृदयं च, जिनके हृदय जथा हृदय रुक रुक जथा हृदय, जैसे रुक जैसा हृदय, उनके साथ सख्य नहीं करो, उनके साथ फ्रेंडशिप मत करो, नहीं जानता माँ मुथाल साहब, मरो मत प्लीज, मर जाओ मत, इसी फंस करके ऐसे मत करो, इसे समझा, वो आगे और अच्छा भी समझाएंगे। लेकिन तब इस बात पर हम देखते हैं, यद्यपि कुरुवा महाराज उर्वशी के सौंदर्य और उनके रूप के प्रति इतने आकर्षित हो गए थे, ऐसा नहीं कि कुरुवा महाराज को दूसरे रानी नहीं होंगे, होंगे और उनको भी समर्थ थे, और 10-20 और भी शादी कर ले कोई फर्क थोड़ी पड़ता उनको, मेंटेनेंस में चिंता तो था नहीं उनका, लेकिन फिर भी उर्वशी का रूप उनसे इतने मोहित थे, वो पागल की तरह भोगते थे और मरने तक तैयार हो गए थे। तो उर्वशी ने उनको समझाई कि ऐसे नहीं होना करना चाहिए, और बोल करके और उनको उपदेश दे रही है, देखो इतना ज़्यादा मत फंसो, मैं स्वयं कह रही हूँ स्त्रियों के स्वभाव ऐसी, अभी तक एक ही स्वभाव को बताई, आगे और भी गुण बताएंगे, आगे आगे श्लोक में पढ़ेंगे, हमारे भाग्य में तो एक ही पढ़ा। लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कहते हैं चाणक्य पंडित की बात लिया, बोले देखो चाणक्य पंडित की नीति उपदेश सुनते और कठोर बात कहें, लेकिन उसको नहीं लिखे हैं। ये लिखे हैं तो बोले कि विश्वास नैव कर्तव्यं स्त्री सुराज कुलेषु च, बोले बाकी बात छोड़ो, स्त्री और गवर्नमेंट वर्कर्स को कभी विश्वास नहीं करना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते राज कर्मचारी उनको भरोसा मत करना, विश्वास नहीं हो करते, वो कभी धोखा दे देंगे आपको। और आगे चलकर कहते हैं चाणक्य जी और एक उपदेश देते हैं, क्या बोलते हैं कि वो तो कभी कभी जरूरत पड़े तो उनको अगर प्लान सही फिट नहीं बैठता है तो पति को पुत्र को किसी की मर्डर कर सकते हैं, वो पीछे नहीं हटना। और एक बताते हैं कि माता जस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा गृहम धारण्यम। बोलते हैं कि दो इंस्टांस देते हैं, जिनके घर में माँ नहीं है, साधिता है माँ चल माँ नहीं है, माँ क्यों, माँ ही केवल बच्छला होता है, बच्छल भाव रहता है, पुत्र भले कैसे उसको माने नहीं माने, डांटे उनको पाले उसे कुछ भी करे, वो तो थोड़ा बहुत गुस्सा होगी लेकिन फिर भी ले दे करके उनका बच्छलता रहेगा, उनका प्रेम स्वभाव सहज भाव से रहेगा पुत्र के। बोले जिस पुत्र के माँ नहीं है और दूसरी माँ बीवी के रूप में है, माता जस्य गृहे नास्ति भार्या, भार्या तो है कैसे है ना च अप्रियवादिनी, आप कुछ भी कहो सीधा नाम मान दिए, तो उनको पसंद नहीं, आपकी कोई भी बात उनको पसंद नहीं, और ऐसे बोलती है कटु वाक्य अप्रियवादिनी, प्रिय बात एक ही दिन भी नहीं कहा, उनसे मुंह से जो वाणी निकला ऐसे मुंह करके सुनना होगा, अच्छी बात कभी कही नहीं। तो बोले ऐसी प्रकार के गृहस्थी से घर से तुरंत और भाग करके जंगल में चला जाना चाहिए, किसी को बिना बताए, हाँ फोन फोन घर में छोड़ के जाना चाहिए भाग जाना चाहिए। बोले लेकिन क्यों, बोले जंगल तो फिर भी अच्छा है, घर तो उससे भी बढ़कर है। बोले मतलब इससे ये पता चलता है अगर स्त्री अप्रियवादिनी हो, माँ हो, माँ को देख करके फिर घर टिक सकते, अगर माँ नहीं है केवल दूसरी है तब तो फिर रहने के लायक, हिंस जंतु के साथ रहना फिर भी ठीक है, कितने खतरनाक। तो इसे कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको लेकर के दूसरी बात भी कहते हैं शुरुआत में, बोले देखो केवल इसी को देख करके उनके दोषारोपण नहीं करना चाहिए, हम इतिहास पुराण शास्त्र में और भी देखें ऐसे अनेक महीयसी स्त्री महिला हुए हैं जिनका गुणगान बहुत किया गया है शास्त्र में। ऐसे बोलते हैं कि जो स्त्री पुरुष, बोले पुरुष स्त्री दोनों ही कंडम है, कोई अच्छा नहीं है, बोले उनके कहा कि ये कुछ कम थोड़ी उम्र मर रहा था, उनको सीधे डांटा उनको क्यों मर रहे हो, वो भी तो राजा थे, पुरुष प्रवर थे, वो भी तो मर रहा था उनके, बोले कोई किससे कम नहीं है, केवल उनका गुण दुर्गुण गाएंगे, हम कुछ गुणवान हो गए ऐसा नहीं। तो बोलते हैं कि दोनों ही खराब है, अगर सदाचारी होकर के कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते हैं, कृष्ण भक्ति को जीवन में नहीं लाते हैं, कृष्ण भजन नहीं करते हैं, तो जो भी उनके रूप गुण पढ़ाई लिखाई अचीवमेंट सब ऐसे ही था, कोई किस्से नहीं, सब बेकार। तो इसलिए कोई गुणवान नहीं है, सब दुर्गुणवान है, केवल गुण है कोई कृष्ण के शरणागत हो गए तो उनके सारे अवगुण चला जाएगा, सारे सदगुण आ जाएगा, नहीं तो कृष्ण भक्ति को छोड़ करके हाईली क्वालिफाइड और बाकी सब ठीक ठाक करो, शास्त्र कहता है हरे अभक्तस्य कुतो महात्मा, उनका महात्मा हो गई ही सकता है, मनोरथेन सदा भावती वही, वो तो अपन मेंटल सर्कुलेशन में चलते, उनका गुण दिव्य गुण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, केवल हरि के भक्तों में ऐसे सदगुण आते हैं। तो इसलिए जो भक्ति की स्वीकार नहीं करते हैं उनको तो कदापि विश्वास ना, शास्त्र में ऐसे वर्णन आता है, पांच स्त्रियों के नाम वापस्थिति में लिखा गया, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरिस तथा पंच कन्यां स्मरें नित्यं महापातकनाशनं। बोलते ये पांच स्त्रियों के नाम सुबह उठकर कोई ले ले, इस पांच स्त्रियों का कोई नाम ले ले तो महापाप विनाश हो जाएगा, महापातकनाश, अब उनको किसे कहें। और ये पांचों को पांच जो स्त्री का नाम दिया गया शास्त्र में वो तो पांच कोई भी एक पति वाले नहीं है, सभी का प्लस वन है। अब अहल्या अब पता है उनके पति ने उनको साफ दे दिए पत्थर बन जाकर, अहल्या द्रौपदी अहतो तो फाइव इन वन, अहिल्या द्रौपदी तारा तारा भी वाली सुग्रीव दोनों थे, और कुंती हम तो पता ही है, वो तो शादी से पहले ही टेस्टेड होकर किए थे। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी अब रावण के बाद भीष्म के साथ भी रही, लेकिन फिर भी ऐसे पांच स्त्री जिनका हम चरित्र देखते हैं, जिनका हम जानते हैं कि कोई भी सती के लायक नहीं है, तो उनको सती से भी और ऊपर की स्थिति दिया गया। उनको कहा गया है विवाहित होने पर भी, एक से ज्यादा शादी करने पर भी, शास्त्रों उनको कन्या शब्द से कहा, पंच कन्या, पंच सती की पंच स्त्री नहीं कहा, मतलब ये पांच स्त्री जो है कन्या है अभी भी, पंच कन्या स्मरण नित्यम महापाप का नाश, महापाप नाश हो जाएगा उनका नाम उच्चारण करने से। क्यों, क्या विशेषता था उनकी, इतनी बड़ी पुष्ट उनको दे दिया गया पांच, कोई विशेषता खास ही बात था कि पांचों भले कुछ भी हो कृष्ण के साथ संबंधित थी, पांचों कृष्ण के शरणागत थी, भले अपना प्राइवेट पर्सनल कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन कृष्ण के प्रति सभी संबंधित, कृष्ण संबंधित थी, कृष्ण के शरणागत, ऐसी एक ही गुण के कारण वो भले कैसे हो उनके नाम उच्चारण मात्र में पाप नाश हो जाए। तो अगर कोई भी स्त्री कैसे भी कैसे हो अगर कृष्ण भक्त हो गई, कृष्ण के शरणागत हो गई, तो फिर उनको इसी खाता पर नहीं लेना चाहिए ना, नहीं वो तो हम एक कलयुग के आरंभ में देखते हैं, विल्लम मंगल ठाकुर, विल्लम मंगल ठाकुर के एक संबंध था कि गणिका से, एक प्रशिक्षक से जिनका नाम था चिंतामणि। अब तक विल्लम मंगल ठाकुर के जितने स्तोत्र है उसमें पहले लाइन में उनको वंदना की है, एक गणिका चिंतामणि की बोले गुरु चिंतामणि, हाँ मेरे गुरु है विल्लम मंगल ठाकुर, बोलते इतने बड़े भक्त भगवान के साक्षात्कार किए थे, उनके हरेक रचना में फर्स्ट लाइन में उनको वंदना की चिंतामणि गुरु चिंतामणि, बोलते क्यों जद्य में वैश्या थी और उनके प्रति इतने आसक्त थे विल्लम मंगल ठाकुर को, आप कैरेक्टर पढ़ेंगे तो उन्हें विवाहित थे, बड़े उच्च कुलीन थे, सब कुछ था, लेकिन इतने थे कि भाग कर जाते थे चिंतामणि के पास। उनके घर में उनके पिताजी के देहांत हो गया, उनके पत्नी उनके माँ सब बोलते बोले पिताजी डेढ़ बड़ी पड़े हैं, उनको शुद्धि किया, कुछ बात करो कुछ करो, नहीं सुना, पिताजी मर गए ठीक है बस मैं जाऊँ। वो रात को उठकर चला, इतना भारी बारिश हो रहा था, कितने समझाए उनके कुलगुरु, समझाए पत्नी, समझाई माँ, समझाए भाई, समझा नहीं माना, इतने आकाश था। तो वैसे चिंतामणि से रास्ते में जाने के समय नदी पार करके जाना होता था, तब जो है ब्रिज तो नहीं हुआ, उठा करता था नौका में पारी होता था, रात रात तक तो घर में पिताजी मर गए इसलिए लेट हो गया, रात तक उनको सब रोका कर रखे, रात को नींद नहीं हुआ, आधी रात को उठ करके चलने के लिए तैयार किया, भारी बारिश हो रहा था, घनघोर बारिश, बिजली कड़क रहा था, उसको देख करके घर वाले सारे निंदा कर रहे थे, बोले तू कैसे जिंदगी कैसे जी रहा है, इतने बड़े कुलीन, इतने ज्ञानी पुरुष होकर भी। तो उनका पत्नी समझा कर थक गया, बोले मैं क्यों, पत्नी जाकर सुसाइड कर देगी, घर में पिताजी का लाश पड़ा है, पत्नी घर से अंधकार रात बारिश में भागकर जाकर नदी में कूद गई, वो मर गई, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं, वो तो चिंतामणि से आसक्त जा रहे थे लोगों में, घर वाले सब छोड़ करके आधी रात को घोर घनघोर बारिश में फिर भी चले गए, और आधी रात को तो बोट मैन था नहीं, बोट तो था नहीं, अब नदी पार कैसे करूँ, इधर उधर पागल तरह भागे, इधर उधर देखे कोई उपाय नहीं था, बारिश हो रहा था, पानी बिल्कुल भर के बह रहा था नदी में, कैसे पार करे, पागल हो चुके थे। तो देखे कि कुछ एक बह रहा है, बोले सुझे लकड़ी का खंड है उसी के साथ पार कर जाऊँ, कोई बात नहीं, वो लकड़ी था नहीं, आपने पत्नी की डेढ़ बड़ी थी, उसी को लकड़ी समझ करके खुद पड़े उसी के सहारे में पार कर गए, नदी पार गए उसी के सहारे, बोले समझे लकड़ी, उनको ध्यान ही नहीं था, इतने कामांध हो चुके थे, और फिर गीले कपड़ा भागे, बारिश भी हो रहा था, नदी में ऐसे तैर करके आए, जाकर चिंतामणि के घर में प्रवेश करने के लिए देखिए वो अपस्टेयर में रहती थी, और सीढ़ी जो जहाँ पर स्टेयर कैसे बंद था, चाबी लगा था, आधी रात था, उनके घूम घाम के चारों तरफ दो चार परिक्रमा लगाए तो मिले नहीं रास्ता, कैसे ऊपर चढ़ेंगे, बारिश में एक सांप उतर करके चढ़ रहा था ऊपर, ऊपर तक गया था, और सांप बोले अरे रस्सी तो व्यवस्था है ही, पकड़ लिए सांप, सांप को पकड़ लिए, सांप मरने के भय से इतने टाइट हो जाते हैं, सांप जानते हैं उनका स्वभाव होता है, जो पकड़ लेना, इतने हार्ड हो जाएंगे, बिल्कुल पकड़ लिया उन्होंने ऊपर से, तो ये जीवंत सांप को पकड़ करके चढ़ गए अपस्टेयर, चले गए अपस्टेयर, चले गए। इससे घनघोर बारिश बिजली चढ़ रहा, जा करके उनके नाक की टोन के दरवाजे, वो तो घबरा गए, बोले कौन भूत प्रेत आ गया क्या इस आधी रात को बारिश हो रही है। अरे देखे तो इसे गिले होकर के बिल्लो उल्टा हो गया, ना तुम आए कैसे, मैं तो सीढ़ी जो स्टेयर के स्क्वाड बंद है ना, नहीं तो व्यवस्था तो क्या रस्सी था बोल रहा है, रस्सी मैं तो कोई रस्सी नहीं लगा, जाके कि टर्च जो भी होगा देखे तो सांप, बोले बाप रे बाप सांप, तो बोट नहीं होगा नदी कैसे पार की, नहीं नदी तो बोट में नहीं था, कोई लकड़ी आ रहा था पार कर दिया, मुझे लकड़ी ऐसे आधी रहा तो लकड़ी कैसे, जाके देखे उनकी स्त्री की डेड बॉडी था, ऐसे खतरनाक स्थिति में आकर पहुंचे, तो उनको देख करके चिंतामणि वेश्या ने उनको फटकारी, बोले तू इतने पागल, इतने सब कुछ करके अगर इतने ध्यान, इतने प्रयास, इतने चेष्टा तू कृष्ण के लिए करता, आज तू भगवत भक्त हो जाता, भगवत को प्राप्ति, भगवान को प्राप्त कर लेता, जीवन के जो असली लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेता, तू मुझे पीछे पढ़ा क्या मिलता तुझे इसमें है क्या, मैं तो मरने वाली हूँ, तू ही मरने वाली, दोनों ही नर्क में जाएंगे। उन्होंने जो इस प्रकार बात कही, सही बात कही, तो उनको लगा, क्योंकि वो ये तो ब्राह्मण कुल वेद ज्ञान था, उनको जानकार थे, जैसे उनसे इतने कामांध थे, इतने उन्हीं के सामने जिसके प्रति आसक्त हो, बिल्कुल इतनी बुरी तरह से फटकारी, उनको इतनी गाली दी, ऐसे बोला कि तुम जितने मेरे लिए आसक्त हो, इतने उसका आधा चौथा ही अगर आसक्त कृष्ण के प्रति होता तो आपका जीवन धन्य हो जाता, सफल हो जाता। वो बात पूरी तरह से स्ट्राइक की, तो वही रात से अंधे रात से वहीं से उन्होंने निकल पड़े, ना बस और घर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, उन्होंने सही बात कही, तो कृष्ण के लिए क्यों नहीं प्रयास करती, कृष्ण अर्थ है चल पड़े, आपने घर बाड़ी राज्य त्याग करके वही रात चलते 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 कहते आए, हमेशा कृष्ण ध्यान करते, हे कृष्ण क्या कभी मैं आपको पा सकता हूँ, क्या कभी मैं कभी आपका कोई चिंतन करते करते तो कोई भिक्षा मांगते थे तो भूख लगा तो नहीं तो चलते चलते आते थे, आ करके वो थे केरला के, वहाँ के इंडिया बॉर्डर, वहाँ से चलते 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 से भिखारी इसमें ऐसे ही पागल की तरह भागे भागे महाराष्ट्र तक आ गए। महाराष्ट्र में बोलते हैं कि कृष्णा नदी का जहाँ उद्गम है वहाँ स्थान का नाम सतारा है, आप जानते होंगे पुणे के पास एक डिस्ट्रिक्ट है सतारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर तो कृष्ण बन्ना ये दो धारा है, कृष्णा के एक साइड और धारा निकला है बन्ना नदी कृष्ण बन्ना नदी, वहीं पर आकर पहुँचे और तभी जमाने में बड़े सुंदर नदी के धारा दुर्भाग से जाकर स्नान किए, स्नान करके भूख तो प्यास में लग रहा था, सब कुछ कर रहा था, इतने दिन से चलते चलते आए हैं हताश, और कृष्ण के स्मरण करते स्नान करते हुए देखे कि तट पर एक कुमारी स्त्री स्नान कर रही थी, कुमारी जैसे युवती स्त्री स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी, तो उसको देखे उन फिर सारे कृष्ण स्मरण गाए और स्त्री स्मरण करे, और इतने हो गए कि सारे बुद्धि वृत्ति सब साइड, और तो फिर उनके पीछा की वो स्नान करके गई तो उनका पीछे पीछे देख लिया, और क्या करूँ मेरी बुद्धि काम नहीं करता है, कब उसको प्राप्त करना है, उनका पीछे पीछे उनको फॉलो की, वो स्त्री भी देखा मुझे क्यों पीछे पड़ी उन्होंने, मैं स्नान करके आ रही थी उनका पीछे पीछे हुआ है, वो अपने घर में गई वो उनका घर में गए, जाकर दरवाजे पर बैठे वो घर चली गई, उनको शर्म लग रही थी, जा करके उनके पति को बोले, वो भी रतन शादी की हुई होगी, उनके पति को बोले कि लगते तो अच्छा खासी लगती मेरे पीछे पड़ गए, मैं स्नान कर रही थी मुझे देखे देख कर मेरे पीछे फॉलो कर रहे, ब्यूटी क्या रही, तो उनकी पत्नी बड़े सुजोग के ब्राह्मण थे, वो आए देखे कि जनेऊ धारण किए हैं और तिलक लिए हैं, बिल्कुल पंडित कृष्ण भक्त हो चुके थे ना, लेकिन ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बैठे हैं, उनको पूछे क्या सलाह करूँ आपके, आप प्रणाम किए बोले आप लगता है कि आप तो भक्ति से लगते हैं, क्या करूँ आप क्या सलाह करूँ, वो बोला क्या करूँ आप, उनको ले मुझे उन्होंने स्त्री के पति में हूँ वो मुझे बताई कि आपको पीछे पीछे आ रहे थे, मैं आपको क्या सलाह करूँ, वो इतने बेशरम हो गए थे उनको ही बता दिया, बोले देखो मैं इसे جا رہا تھا تو آپ کسی کی دیکھ کر کے میں بالکل پوری طرح سے ابھی بدھی بھرمت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو ان کے پتی کو بولے. وہ بھی اتنے سدگن جو براہمن کے بھکت تھے ان پتی وہ بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ جا کر اپنی پتنی کے بولے بولے آپ ان کے منوکامنا پورن کرو. وہ بولے آپ بولتے ہیں نا میں بولتا ہوں آپ چلو. تو پتی کے آدھے سے آدھے سے ہندو کر کے وہ براہمن پتنی نے آپ سدگ بھرائی اسے بیٹھے تھے ان کا سر. جب آئے ان کے پاس ان کو تو وشواس نہیں ہو رہا تھا. بولا مجھے مارتے پیٹتے نہیں ہیں مجھے وہ گیسٹ کر کے بولے اچھا میرے منس کا پورن کرنے کی ویوستھا ہے. جیسے آئے تو ان کو پھر یاد آیا ان کو دیکھ کر کے سامنے ان کو دیکھے تو ان کو یاد آیا. بولے میں چنتا من کی یاد آیا بولے ان کے پاس میں کتنے آسکت ہو جاتے تھے ان سے پھٹکار کر کے ایک بدھی لے کر کرشن پراپتی کرنے کے لیے جا رہا تھا پھر پھنس گیا. یہ دوبارہ پتن میرے ہوا کیا کارن ہے یہ آنکھ ہی کارن ہے. یہ آنکھ اس روپ کو دیکھ کر کے اتنی طرح سے پھنس گیا تو نا 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 پھر دوبارہ مجھے پھنسنا نہیں ہے مجھے کرشن کے بھکتی کے راستے میں چلنا ہے. تو سامنے ان کا سری کھڑے تھے بولے اب کیا اچھا کیا کرو سیوا بتائیے کیا کرو. پتی نے مجھے آدیش کیا آپ کو سنتشٹ کرنے کے لیے کیا سیوا کروں. تو وہ تو ان کا کان میں کچھ نہیں جا رہا تھا وہ تو وہی چنتن کر رہے تھے چنتا ہونے کے جو ڈانٹ اور ان کے کس پرکار پتن دوبارہ ہوا ہے. اس لیے ادھر ہو کر کے بولے ٹھیک ہے میرا سیوا کرنا چاہتی ہوں ہاں جو بولو میں سیوا کرنے کے تیار نہ تھا. بولے آپ کے جو گواہ بات باندھ دیا اس میں وہ پین لگا کے گیا تھی بولے وہ تو ہیئر پن نکال کے دو ہیئر پن کرنا بس بولا نا میرے جو اچھا تھا سر وہی ہیئر پن کو نکال کے دو. وہ سمجھ نہیں پائی ہیئر پن نکال کے دی انہیں کے سامنے دونوں ہیئر پن لیے اپنے آنکھ کو کوستے ہوئے دونوں آنکھ ترنت پھوڑ دیے دونوں آنکھ کو بند کر دیے جھر جھر رکھتے بھر گیا دونوں آنکھ نشٹ کر دیے. وہ تو استری دیکھ رہا وہ کیا کہا یہ تو براہمن مجھے بلایا آپ نے آنکھ پھوڑ دیا میرے کانٹا لے کر کے چلائی. انہوں نے ان کے پتی دوڑ کر دیکھے تو بالکل رکتاکت ہو کر پڑے بول سکتے تھے بولے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے بس میں میرا پشچات آپ کے پھل میں رکاؤں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے کچھ نہیں آپ رہیے. تو دھیرے دھیرے نکل گئے تو کہیں سے جائیں گے بولے نہیں بس میرا درباگیہ کو مجھے بھوگنے دیجیے مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے کوئی ذرا ساتھ نہیں آئے ہاتھ جوڑ کے منع کر دیے. یہی سے دونوں آنکھ میں اندھے اکیلے چلے کوئی پریکٹس نہیں تھا پہلے کا بلائنڈ ہوتے تو اپنے چلا لیتے گاڑی لیکن وہ ابھی ابھی اندھے بنے نو ایکسپیرئنس. پھر بھی یہی سے کئی ٹھکر کھائے ہوں گے کئی گرے ہوں گے پڑے ہوں گے شاید کوئی مدد کیا ہوگا جا کر کرشنا ندی میں پھر دوبارہ اسنان کیے پار کر کے وہ زیادہ جا نہیں پائے وہیں بیٹھے کنارے بیٹھ کے نیچے بیٹھ کر کے اتنے آتر بھاؤ سے ان کا بڑھ گیا. اب تو کچھ دیکھ نہیں سکتے کیا کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں کیول کرشن درشن ہوا. اتنے گمبھیر چنتن کیے اس پرکار کے کرشن کو دھیان کیے یہی بیٹھ کر ایک کویتا لکھیں شری کرشن کرنامرتم. کرشن کے کان کو امرت سدرش جو پدیاولی یہیں بیٹھ کے رچنا کی آپ نے پشچاتا چلانا اور وہیں سے پھر چلتے چلتے کیونکہ اب جو کرشن سہایتا مل گیا وہ اکیلے چلتے چلتے مہاراشٹر سے ورنداون آ گئے. ورنداون آ کر کے آندھے تھے پھر بھی کرشن کے ساتھ اتنے ان کا سمپرک ہوا کرشن ان کے ساتھ کھیلتے تھے پکڑتے تھے کھلاتے تھے کرتے تھے ان کے ساتھ اسے کرتے تھے. وہی چوراگ پرگنیم اشٹکم لکھے ہیں بولتے بولے تو میرا سب کچھ چوری مجھے تو اتنے گھائل کیا میرا سارے بدھی گیان سمپتی گھر پریوار تو پہلے ہی اسے نکال دیا ویسے پتی آپ کو وہ بھی لے لیا یہ سب کچھ لے لیا ہنم چ مانم چ تتھندریا ہتوان پرانس ہتوا مم سرومیو بولا سب کچھ ہرن کے لیے ہم نے لیکن آج تو میرے آیا ہے میرے اندھے کو ہیلپ کرنے کے لیے میں تجھے پکڑا ہوں چھوڑوں گا نہیں اسے باندھوں گا. یہ بھاو ان کے کرشن پتی بولتے ہیں کہ سکڑوں سال ورنداون میں رہے بالکل کرشن کے ساتھ رہتے تھے بال کرشن کے سکھا بن گئے تھے لیکن آنکھ نہیں دیکھتا تھا لیکن سب کچھ دیویہ درشٹی سے دیکھتے تھے. یہ بھاونا آ گیا تو ایک استری گرو مانتے ہیں اس سے بولی انہیں کے کارن میں آج اتنے بڑے ویلو منگل ٹھاکر بنے एक अति उच्च कोटि के भक्त माने गए, उनकी रचना भगवान के कान को अमृत जैसा लगता ऐसे बन गए, जो इतने खतरनाक आसक्त वैश्यासक्त पुरुष थे। तो कोई अवगुण, कोई तुच्छ गुण, कोई कमी, किसी प्रकार के कोई फर्क नहीं डालेगा अगर आप तीव्र भाव से कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर ले। सारे रेड लाइन ब्लैक लाइन सब मोड़ मरोड़ करके सीधा हो जाए, सब रेड लाइन में मिलने ठाकुर का इसी एक ही जन्म, और ऐसे अनेक उदाहरण, अनेक उदाहरण है जो राम कृष्ण के चरण में समर्पित करके और इतिहास में पुराण में शास्त्र में आपने नाम को जाजुल्य करके रखे। ये जैसे पांच स्त्रियों के नाम लिए, सबरी और कैसे अनेक अनेक हैं, जो केवल बाकी किसी के प्रति आसक्त नहीं, कृष्ण के प्रति जैसे प्रकार से आसक्त हो गए, फिर उनका सारे अवगुण दुर्गुण सारे साइड हो गया और बहुत दूर चले जाए। तो इसलिए ना तो हम स्त्रियों की चर्चा करना चाहिए, ना पुरुषों की चर्चा करना चाहिए, केवल हमारे एक ही चर्चा का विषय होना चाहिए, श्री राधिका रमण जी की, है ना। उनके चर्चा, उनके मनन, उनके चिंतन, उनके दर्शन करें, बाकी जितने दुर्गुण अवगुण अन्य वस्तु है सारे खत्म होकर कन्वर्टेड हो जाएगा, तो आप महापुरुष बन जाएंगे। तो इसलिए यद्यपि ये सब चर्चा करते हैं, पढ़ेंगे आगे चल के उर्वशी से कहेंगे स्त्रियों के बारे में, उसे कहें वो एक साल में एक बार मिलेंगे, और उर्वशी लोग तक प्राप्ति कर गए, लेकिन प्राप्ति करने के बाद भी उनका मन शांत नहीं होगा। तो इसलिए अगर काम को पूर्ति करने के लिए प्रयास करो तो पूर्वा जैसा सामर्थ्य तो हमारा है ही नहीं, ना इतने गुण है, ना रूप है, ना धन है, कुछ ना पोजिशन है। वो ऐसा करके गंधर्व लोग प्राप्ति कर गए यज्ञ करके, तभी ना संतुष्ट हो पाए, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहा कि उसके पीछे पढ़ो, अगर आपके मन को इंद्रियों को सब प्रकार शांत करना चाहते हो, भरपूर उनको सुख देना चाहते हो, तो केवल श्री कृष्ण श्री राम के चरण में समर्पित हो जाओ, दैट्स इट। फिर तो सारे सर्टिफिकेट चेंज हो जाए, सब चेंज होकर बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। हरे कृष्ण। यस महाराज, क्या